الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبول، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مذہب اسلام مذہب ہونے کی حیثیت سے اپنے پیروکاروں پر، اپنے ماننے والوں پر کچھ چیزوں کو ضروری اور لازم قرار دیتا ہے کہ وہ کام بحیثیت مذہب کے اور مذہب کے فالوور ہونے کے کرنا ضروری ہے. جیسے فرائض جتنے ہم پر عائد کیے گئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بحیثیت اسلام مسلمان ہونے کے ہم لوگوں پر ان کی پابجائی ضروری ہے. فرائض صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی فرائض ہیں. انہی فرائض کی ایک فہرست میں سے، اس کی ایک لسٹ میں سے، ایک سر فہرست جو چیز ہے، سب سے اوپر جو چیز ہے، جو سب کے اوپر حاوی ہے، وہ ہے علم کی تحصیل، علم کا حاصل کرنا. وہ دینی فریضہ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر دین کے علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، فریضۃ. نماز چھوڑنے سے جیسے دین میں خلل آتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے سے واجب ہونے کے باوجود جیسے دین میں نقص رہ جاتا ہے، کسی پر حج واجب ہے اور وہ حج نہ کرے تو جیسے دین کے اندر کمی آ جاتی ہے. کوئی دین کا علم ضروری درجے میں حاصل کرنے کے قابل ہے، پھر بھی وہ اس کو حاصل نہیں کرتا، تو اس سے بھی ویسے ہی کمی آ جاتی ہے، دین کے اندر ویسے ہی نقص آ جاتا ہے. یہ جو طلب العلم فریضۃن ہے، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ مدارس میں پڑھایا جانے والا 8 سالہ کورس یہ مراد نہیں ہے اس سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے عالم بنانا ضروری ہے، یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے جو فرائض مختلف لائن سے، مختلف طریقوں سے اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان سب کا جاننا اس کے اوپر فرض ہے. جیسے عبادات کی لائن سے بندے پر کیا کیا عبادتیں فرض ہیں وہ جاننا، نماز فرض ہے، نماز کے لیے کیا ضروری ہے وہ جاننا، وضو ضروری ہے تو وضو کن چیزوں کے کرنے سے ہوتا ہے، اور کون سی ایسی ضروری چیزیں ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، یعنی جس کو ہم فرائض بولیں گے، وضو کے فرائض کیا ہیں یہ ہم کو معلوم رہنا. غسل کی ضرورت ہر انسان، ہر بالغ مرد کو، عورت کو پڑتی ہے، تو غسل کے کیا فرائض ہیں وہ معلوم رہنا. نماز ہم پڑھتے ہیں تو کون سی چیزیں نماز کی ایسی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ ہم کو معلوم رہنا. باہر نماز کے لیے کتنی ضروری چیزیں ہیں، نماز کے اندر نماز کے لیے کتنی ضروری چیزیں ہیں. جیسے جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ، وہ جائے نماز اگر پاک نہیں ہے، اس کو بچے نے پیشاب کر دیا ہے، تو اب آپ اس کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نماز تو پوری صحیح پڑھ رہے ہیں، پورا سورہ بقرہ اس کے اندر ختم کر چکے ہیں، لیکن جائے نماز اگر آپ کی پاک نہیں ہے جس پہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو یہ نماز سے باہر کی ضروری چیز ہے. قبلے کی طرف آپ کا رخ نہیں ہے اور آپ نماز پڑھے جا رہے ہیں، مشرق کی طرف اگر مثال کے طور پر قبلہ ہے، آپ مغرب کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت اور ایک قیام تک اس کا ادا نہیں ہوتا، رکوع تک ادا نہیں ہوتا، سجدہ تک ادا نہیں ہوتا، تو یہ نماز کے باہر کی ضروری چیز ہے. پھر نماز کے اندر تلاوت ضروری، قیام ضروری، تکبیر تحریمہ ضروری، سجدہ ضروری، قعدہ ضروری، رکوع ضروری، سلام ضروری، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اندر کی ضرورت کی چیزیں، باہر کی ضرورت کی چیزیں یہ حاصل کرنا. شادی شدہ بندہ ہے تو شادی شدہ بندے کے اوپر بیوی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہونے کے بیوی پہ کیا، بیوی کے کون سے حقوق مجھ پر ہیں، یہ حقوق کا جاننا. جاب بندہ کرتا ہے تو وہ جو ملازمت کرتا ہے، بحیثیت ملازم ہونے کے میرے ذمے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ جاننا. تو اب اس کے बच्चे होने की वजह से बच्चों के हकों को जानना, वो खुद किसी का बेटा और बच्चा है तो उस हिसाब से अपने वालिदैन के बड़ों के हकों को जानना, वो किसी के आसपास रहता है तो अपने पड़ोसियों के हकों को जानना, वो जॉब पे जाता है तो अपने मुलाजमत के हकों को जानना, ये चीजें जो इंसान के साथ में घिरी हुई रहती हैं, जो इंसान की जरूरतें हैं, उसकी खुद उस जरूरतों के अंदर शरीयत उससे क्या चाहती है ये जानना, ये फर्ज है। एक होता है डिटेल के साथ में जानना कि मुझे मिसाल के तौर पर मैं जॉब नहीं करता फिर भी मुलाजमत के और जॉब की तफसीलात और अहकाम को मालूम करना, ये जरूरी नहीं, लेकिन मैं जॉब करता हूँ तो जॉब करने की जो तफसीलात हैं, जैसी मैं जॉब करता हूँ वो जायज है या नहीं, मैं जो जॉब करता हूँ उसके अंदर मजीद मुझे क्या क्या चीजें पेश आती हैं वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये जानना जरूरी है। तो हर बंदा, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है, जो बालिग हो गया है वो शरीयत का मुकल्लफ है, उसके ऊपर इल्म का हासिल करना फर्ज है। कौन से इल्म का हासिल करना फर्ज है इसकी कुछ किसी कदर तफसील मैं आपको अभी बता रहा था। उस इल्म का हासिल करना फर्ज है जिस इल्म से उसको बराह रास्त और फौरन वाबस्तगी और इसकी जरूरत है। अब वो जिसका बेटा होगा, जाहिर सी बात है वो बेटा, उसके वालदैन हयात है तो उसके उनके हकूक इसके ऊपर है, वो किसी का बाप है तो उसके बेटे के हकूक इसके ऊपर है, वो किसी का शौहर है तो उसकी बीवी के हकूक इसके ऊपर है, वो किसी का पड़ोसी है तो पड़ोसी के हकूक इसके ऊपर है। तो ये सारे हकूक हैं, ये मामलात के हकूक, माशरत के हकूक, इबादात के हकूक, अखलाक के हकूक, ये सारे हकूक का जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और तफसील इल्म का हासिल करना ये फर्ज किफाया है। मुझे जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन चीजों का इल्म हासिल करना ये फर्ज किफाया है। जैसे अभी बताया गया मेरे ऊपर मिसाल के तौर पर जकात फर्ज नहीं है, लेकिन मुझे जकात के मसाइल मुझे जानना है तो ये मेरा जानना ये फर्ज किफाया में आएगा, यानी उम्मत में ऐसे अफराद का अवेलेबल होना जरूरी है जो जकात के मसाइल को जानते हो। अगर उम्मत ऐसे अफराद से खाली हो जाएगी तो सारी उम्मत गुनाहगार होगी, और अगर कुछ अफराद भी तैयार हो जाएंगे तो उम्मत के सर से ये जिम्मेदारी और ये फरीजा उनके सर से हट जाएगा। तो एक लेवल होता है फर्ज होने का, फर्ज आयन का, और एक लेवल दर्जा होता है फर्ज किफाया का। तो इल्म की तहसील में भी एक दर्ज जो दर्जा है फर्ज आयन का वो है जिसमें हम सब किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, वो हमसे अलग नहीं हो सकते, हम उससे अलग नहीं हो सकते, कुछ वो है। और कुछ ऐसे हैं कि जो हमसे अलहदा है, मेरे ऊपर मिसाल के तौर पर किसी पर जकात फर्ज नहीं है तो जकात के मसाइल का जानना, हज किसी पर फर्ज नहीं है, माली उसके पास नहीं है तो हज के मसाइल का जानना फर्ज आयन नहीं है लेकिन फर्ज किफाया है। वो अगर सीखेगा और दूसरों को बताएगा तो एक तो उसको फायदा होगा, दूसरे उम्मत के जिम्मे से ये फरीजा साबित हो जाएगा, उम्मत के जिम्मे से ये बोझ उतर जाएगा। ये तो तलबुल इल्म फरीजतुन में इल्म के हासिल करने का शरई हुक्म क्या है उसकी किसी कदर तफसील, शरीयत के जो अहकाम है उन अहकाम के फजाइल क्या है उनके जानने के, अल्लाह ने जो वही का इल्म उतारा है कुरान की शक्ल में और वही गैर मतलूब यानी अहादीस की शक्ल में, उनकी क्या फजीलतें हैं, इसके बेशुमार फजाइल, इसके ऊपर बेशुमार वादे, इसके ऊपर बेशुमार अजर का वादा अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल की जबानी हुआ, कुरान शरीफ के तिलावत करने के ऊपर जो फजाइल है, जो हाफिज कुरान होगा और फिर उस कुरान के तकाजों को पूरा करेगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक उसकी इस तिलावत को, उसकी इस हिफाजत को, उसके इस हाफिज होने को, इस पर आमिल बिल कुरान होने को उसकी मगफिरत का भी जरिया बनाएंगे और उसको सिफारिशी बनाएंगे 10 आदमियों के वास्ते उसके खानदान के। कैसे 10 आदमियों के वास्ते? अल्लज़ीन क़द वजबत लहुमुन नार, जिनके वास्ते जहन्नम वाजिब हो गई है, जिनकी जहन्नम पक्की है, बोलेंगे कि हाफिज साहब तुम इनकी मगफिरत करवा सकते हो, ये उनके वास्ते फजीलत है एक हाफिज के वास्ते। अच्छा, फिर जो हाफिज कुरान होगा आखिरत में उसके वास्ते जो वादे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी मंद होगी, और उसके उससे कहा जाएगा कि तुम जो कुरान की तिलाव आयत पढ़ते रहते थे यहाँ पर भी एक एक आयत पढ़ते जाओ और एक एक दर्जा जन्नत का चढ़ते जाओ। ये दर्जा हमारे लिए तो मादी मादी चीजों से इसको समझा नहीं जा सकता, ग्रेड जो होता है, लेवल जो होता है वो अल्लाह पाक जन्नत के अंदर बलंतर फरमाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जन्नत के 7 तबके हैं, एक सबसे ऊंचा वाला जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल फिरदौस में भी लाखों करोड़ों इंसान होंगे, अंबिया होंगे, लेकिन सबका दर्जा तो एक तरह नहीं होगा ना, हुजूर पाक सल्लम का दर्जा सबसे ऊपर है, तो एक जगह सब है लेकिन दर्जा सबका एक नहीं है। हाफिज कुरान से भी बोला जाएगा कि जो जो कुरान की आयत है तुम दुनिया में पढ़ते रहे हो, एक एक आयत यहाँ पर पढ़ते जाओ और एक एक दर्जा और एक एक ग्रेड ऊपर होते चले जाओ, उसके दर्जात के बुलंदी का ये जरिया बनेगा। आलिम दीन के बारे में क्या आता है, हदीस शरीफ में आता है दीन के एक बाब का हासिल कर लेना 200 रकात नफिल पढ़ने से अफजल है। उलमा ने बाब की तशरीह में मसले का हुक्म जिक्र किया है। कोई मसला जानता है जकात का, इसके वास्ते दूसरे को बताने के और अपने अमल करने के वास्ते, तो उसको फरमाया गया एक मसले का सीखना 200 रकात नफिल पढ़ने से बेहतर। आलिम के लिए भी सिफारिश का वादा है कि जो आलिम दीन होगा उसको भी उसके खानदान वालों की सिफारिश का हक दिया जाएगा। एक बात यहाँ जो जहन में रखने की है वो ये कि जितने वादे हैं वो सारे वादे वही के इल्म के वास्ते आए, वही का इल्म कुरान की और हदीस की शक्ल में है और उनकी तफसीलात की शक्ल में। जितने वादे हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ वही के इल्म के वास्ते हैं। इसका खुलासा, इसका मतलब ये निकला कि जो वही का इल्म नहीं है, दुनिया के जो फनून है, दुनिया के जो उलूम है, वो अपनी जगह दुनियावी तौर पर मुफीद होने के साथ साथ अजर का कोई हिस्सा अपने साथ शामिल नहीं रखते। उनके साथ में कोई खास वादा नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी को फलां डिग्री हासिल होगा, कोई बैचलर पढ़ा हुआ होगा, कोई मास्टर किया हुआ होगा, कोई पीएचडी किया हुआ होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई दूसरा और पोस्ट हासिल किया हुआ होगा, कोई दूसरे किस्म की तालीम हासिल किया होगा, अल्लाह ने भी उसके लिए कोई खास वादा नहीं किया जैसे हाफिज के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई वादा नहीं किया जैसे कि हुफाज और उलमा के लिए, दीगर दीगर लोगों के वास्ते, उम्मतियों के वास्ते वादे आए। तो ये एक बात खास है जो समझने की है कि जितने फजाइल हैं, जितने वादे हैं, वो सारे के सारे वादे असलतन सिर्फ और सिर्फ वो वही के इल्म के वास्ते अल्लाह पाक ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। कितना भी बड़ा डॉक्टर होगा, कितना भी बड़ा इंजीनियर होगा, कितना ही बड़ा दुनिया का पोस्ट और दुनिया में तालीम का हासिल किया हुआ होगा, अपनी जगह वो अपने इल्म की बुनियाद पर इज्जत के, वकार के, एहतराम के और दूसरी दुनियावी मनफातों के बेशक काबिल है, लेकिन आखिरत के अंदर उसके माँ बाप के सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। आखिरत के अंदर उसको ये नहीं बोला जाएगा कि तुमने एक एक जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, तुमने एक एक मरीज को जो दवा दी है, तुमने जो उसका इलाज किया और उसके जरिए अल्लाह ने शिफा भी दी, उसके दर्जे में एक एक दर्जा, उसके इवज में एक एक दर्जा चढ़ते जाओ, ये उसके लिए कोई वादा नहीं। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि तुम अपने रिश्तेदारों के हक में सिफारिश करो जिनके हक में जहन्नम वाजिब हो चुकी है। उसका सवाब अपनी जगह है, कोई किसी का इलाज करता है, इलाज करने का सवाब अपनी जगह। ये नहीं बोला जा रहा कि इलाज करने से किसी का फायदा नहीं होता, उससे आखिरत में अजर नहीं बोला जाता। ये बोला जा रहा है कि वादे जितने हैं वो वादे सिर्फ और सिर्फ हुफाज के लिए हैं, वो उलमा के लिए हैं, वो वही का इल्म हासिल करने वालों के लिए। गैर वही का जो इल्म है उसके दुनियावी फवाइद भी है और उसके साथ में अगर खैरखाही का जज्बा जुड़ा हुआ हो, नेक नियति हो, तो उससे आखिरत में भी अजर मिलने वाला है। लेकिन जो खास फजीलतें हैं, जो खास वादे हैं, जो खास अजर हैं, ये इन्हीं के साथ में खास है। अब माशरे के अंदर दीनी इल्म के हवाले से, वही के इल्म के हवाले से दो तबके पाए जाते हैं। एक तबका तो वो है जिसको इन उलूम की और अपने शरई इल्म की, फर्ज इल्म के हासिल करने की तरफ दिलचस्पी और रगबत ही नहीं, उसका ख्याल ही नहीं कि हमको क्या बहैसियत मुसलमान होने के, मजहब इस्लाम के फॉलोअर होने के, हमको किन चीजों की कौन से इल्म का हासिल करना जरूरी है, इसका ख्याल ही नहीं। इस वास्ते हुक्म शरई बताया गया कि जैसे एक मुसलमान के लिए नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ऐसे ही इल्म का जरूरत के वक्त हासिल करना फर्ज है। उसके बगैर, नमाज के बगैर ईमान में नक्स है, इस्लाम में नक्स है, जकात के काबिल है, उसके ऊपर जकात फर्ज है और वो जकात नहीं देता तो उसके ईमान में, इस्लाम में नक्स है, खामी है, कमी है। ऐसे ही जो फर्ज दर्जा इल्म का है अगर बंदे उसको हासिल नहीं करते हैं तो उनके इस्लाम और ईमान में नक्स है। ये चीज समझने की है और ये उम्र के साथ में खास नहीं है कि बच्चे होने की सूरत में आप इल्म हासिल करें, बड़े होने के साथ में आपके साथ से ये आपके सर से ये जिम्मेदारी उतर गई है। मर्द हो तो हासिल करें, औरतें हो तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है। औरतें हो तो हासिल करें, मर्द जॉब कर रहे हैं इस वास्ते उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमने अब तक जरूरत के बकदर इल्म हासिल नहीं किया है तो उसके कई तरीके हैं। जरूरी नहीं है कि मदारिस ही में दाखिला लेकर के इल्म की तहसील की जाए, लेकिन उसके कई सारे तरीके हैं और उन तरीकों का भी मुख्तसरन बयान भी किया जाएगा। लेकिन पहले ये जहन बनना है कि क्या जरूरत के बकदर इल्म हमने हासिल किया है। अगर नहीं किया है तो क्या अब हम हमारे सर से अभी क्या ये जिम्मेदारी उतर चुकी है या अभी भी बाकी है, और अगर बाकी है तो उसके हासिल करने की शक्ल क्या है। एक शक्ल उसकी ये है कि मदारिस में दाखिला लेकर के हासिल किया जाए, ये शक्ल नहीं हो सकती है तो हमारी जो जॉब की छुट्टियां होती हैं उसके अंदर किसी से खास कोर्स पढ़ लिया जाए हमारी जरूरत के बकदर, और अगर ये शक्ल भी नहीं हो सकती है तो उलमा से, दीन का इल्म रखने वाले हकीकी उलमा से अपना वास्ता, रब्त और कॉन्टैक्ट रखा जाए, इसके जरिए से दीन के इल्म को जो भी जरूरत पेश आए उनसे मसला पूछकर मालूम कर लिया करें। ये तीन दर्जे हैं। अगर इन तीन दर्जों में से कोई किसी भी दर्जे को अपना लेता है, किसी भी दर्जे को लेकर के चलता है, मदारिस में दाखिला लेकर इल्म हासिल किया या कोई मुख्तसर कोर्स करके इल्म हासिल किया या उलमा से रब्त में रहकर मसाइल पूछपूर करके जिंदगी गुजारता है, तो वो अपने तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा वाले फरीजे को पूरा करने वाला समझा जाएगा। और अगर कोई इन तीनों में से किसी से भी अपनी जरूरत को, इस शरई जरूरत को पूरा नहीं करता तो ये फर्ज उसके जिम्मे से नहीं उतरेगा और उसके ईमान और इस्लाम में उस कदर नक्स रह जाएगा। तो सबसे पहले नियत ये करना है कि हम किसी ना किसी दर्जे में तहसील इल्म के इस फरीजे को, इल्म के हासिल करने के इस फरीजे को हासिल अपनाने का जरिया बना लें, जहन बना लें, अपने आप को तैयार कर लें कि ये हमको हासिल करना है। और एक बात ये जहन में रखें कि शरीयत का इल्म नमाज और जकात की हद तक ही नहीं होता, शरीयत की तफसीलात वगैरह वो सिर्फ इबादत की हद तक नहीं होती, हमारे जो घरेलू मामलात हैं उसमें भी इसका दखल है, हमारे जो जॉब के मामलात हैं उसके अंदर भी इसका दखल है, हमारा जो बाहर का चलना फिरना उठना बैठना बैरून मुल्क मुल्क के अंदर गश्त करना जाना आना है इसके अंदर भी शरीयत की तफसीलात और हम पर हमारे लिए अहकाम है, हमारे आस पड़ोस आस पास में पड़ोस में जो लोग रहते हैं हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनके हमारे होकर जो हकूक है उनके हवाले से भी शरीयत के अहकाम है। तो सिर्फ मसाइल नमाज का कोई मसला पेश आया तो मौलाना साहब को फोन किया जा रहा, ये जरूरत तो पूरी हो रही लेकिन नमाज की हद तक, जकात का कोई मसला दरपेश है तो मौलाना साहब से फोन करके मसला पूछ लिया गया, जरूरत तो पूरी हुई लेकिन जकात की हद तक, जो हुकूक वालिदैन के हैं उसके लिए भी पूछने की जरूरत है, जो हुकूक बीवी के हैं उसके लिए भी पूछने की जरूरत है, जो हुकूक अपनी औलाद के हैं उसके लिए भी जरूरत है, जो हुकूक पड़ोसियों के हैं उसके लिए भी फोन करके पूछने की, मिल के पूछने की जरूरत है, जो हुकूक अपने जॉब के मुलाजिमों के अपने पास के अपने कोवर्करों के लिए हैं उनके लिए भी फोन कर पूछने की जरूरत है, हम बाहर खरीदते बेचते हैं क्या चीज खरीदते हैं क्या चीज खरीद सकते हैं और नहीं खरीद सकते हैं, इन सबके लिए भी पूछने की जरूरत है। ये हर बात को वजाहत से इसलिए बयान किया जा रहा है कि ज्यादातर जहन इस तरफ चलते हैं कि इबादत के मसले हो तो पूछ लिया करें, मामला और मुआशरत के अंदर ज्यादातर पूछने की जरूरत नहीं है, ये एक खाम ख्याली है, ये हमारे इस्लामी इस्लाम के बारे में हमारा जो तसव्वुर है उस तसव्वुर के नाकिस और कमतर होने की दलील है, उसकी अलामत है ये। इसलिए फिक्र ये करना है कि वही के इल्म को हम हासिल करने वाले बने और अपने आप को इसके लिए आमादा करें और जो शक्ल भी इसके लिए हो सकते हैं उस शक्ल के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरी तरफ उम्मत का एक वो तबका है जो इसकी तरफ माइल तो है, यानी वही के इल्म को हासिल करता तो है लेकिन उस इल्म को बचाता नहीं है। एक होती है तरगीब और एक होती है तहफीज। उम्मत का एक तबका वो है जो तरगीब से महरूम है, जिसको शौक ही नहीं है इन उलूम का, और उम्मत का एक दूसरा तबका वो है जो हासिल कर लेता है इन उलूम को लेकिन उसके बाप भी इनको बचाता नहीं। आप इसको ऐसा समझें कि अब जैसे हुफाज तैयार हो रहे हैं, बेशुमार सैकड़ों हुफाज तैयार हो रहे हैं लेकिन उनके जाहिर लिबादे से, उनके सूरत शक्ल से, उनके लिबास से, उनके चेहरे मोहरे से लगता नहीं है कि वो हाफिज हैं। आलिम तैयार हो रहे हैं लेकिन बाद ऐसे भी मिलेंगे उनके चेहरे बुझरे से लगेगा नहीं कि वो आलिम है, वो दीन का इल्म हासिल किए हुए हैं, दीन के उलूम के माहिर हैं, लगेगा नहीं। तो ये क्या है, जो इल्म हासिल किया गया है वो इल्म बचा के नहीं रखा गया है, इस वास्ते उसकी ये शक्ल बन गई। तो इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। वालिदैन जो वालिदैन ये फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे हाफिज बन जाए, जो वालिदैन ये फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे दीन का इल्म हासिल कर आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, क्योंकि इसकी बड़ी फजीलतें हैं, उनको ये भी फिक्र करने की जरूरत है कि इन हुफाज के वास्ते, इन उलमा के वास्ते, इन तैयार होने वाले मुफ्तियों के वास्ते जरूरत है इनके इस इफ्ता को, उनके इस इल्म को, उनके इस हिफ्ज को बचा कर रखने की, अंदर से भी और बाहर से भी। आप हैरत करेंगे कि बहुत सारे ईसाई, बहुत सारे यहूदी कुरान पाक को पढ़ते हैं सिर्फ बरकत के हासिल करने के लिए, उनकी शक्ल से और अंदर से, ना जाहिर से ना बाहर से, और अंदर से ना बाहर से किसी भी तरह वो मुसलमान नहीं है लेकिन वो कुरान पढ़ रहे। अब आप सोचें कि हमारे जो हाफिज साहब हैं वो भी चेहरे गुजरे से उस ईसाई की तरह हैं, हमारे जो हाफिज साहब हैं, आलिम साहब हैं, वो भी चेहरे मोहरे से वो इस यहूदी की तरह हैं, वो भी दीन के मसाइल को हासिल इल्म हासिल कर रहा है और वो भी कुरान की तिलावत कर रहा है बरकत की नीयत से और ये भी तिलावत कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या रह गया? फर्क यही है कि वो सिर्फ उसको बरकत के वास्ते और दिल का वक्ती सुकून हासिल करने के वास्ते उसकी तिलावत कर रहा है और हमारा ईमान है, ये हमारी जरूरत है, इस वास्ते हाफिज साहब और एक मुसलमान उसको महफूज करता है, उसको सीने में उतारता है। तो ये फर्क जो है हकीकत में जो होना चाहिए था वो फर्क मिटता जाता है वालिदैन की तवज्जो नहीं करने की वजह से, उनके चेहरे बिगड़ते जाते हैं वालिदैन को फिक्र नहीं, उनका फैशन बिगड़ता जाता है वालिदैन को फिक्र नहीं, उनका लिबास बदल जाता है वालिदैन को फिक्र नहीं। अगर हुफाज भी इस्लामी लिबास नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? अगर उलमा भी इस्लामी लिबास नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? अगर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते तो क्या हम इन काफिरों के मुशाबहत की सूरत लेकर उनके उनके बारगाह में हाजिर होते? क्या हम दाढ़ियों को मुना करके उनके आगे हाजिर होते? क्या हम सर के बालों पर गैरों की फैशनों की तरह बाल रखकर उनके आगे हाजिर होते? क्या हम उनके गैरों का लिबास पहनकर उनके सामने हाजिर होते? तो ये जो हमारे हुफाज का तरीके कार आज हो गया है, फैशन के लिए हाफिज बना जा रहा है, हाफिज जो बना जाता है वो आखिरत में अजर जो मिलने वाला है, आखिरत में जो वादे हमसे किए गए हैं उसके हासिल करने के लिए बना गया है, दुनिया के अंदर अपने आप को हाफिज कहलवाने के लिए नहीं बना गया है। तो एक तबका जो तरगीब से महरूम है उसको जरूरत है कि दिलचस्पी पैदा करे तहसील इल्म की, और एक तबका जो अपने बच्चों को इस तरफ लगाता तो है, उनको हाफिज बनाता तो आलिम तो बनाता है, उनको बिल्कुल जरूरत है उनका हिफ्ज बचाने की, उनके ये इल्म को बचाने की। अगर वो इसको नहीं बचाते हैं तो जाहिरी एतबार से उनमें और गैरों में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी जगह वो जा रहे हो, किसी जगह एक्सीडेंट हो जाए और एक ईसाई मर जाए और एक मुसलमान मर जाए, कैसे पहचानेंगे कि कौन मुसलमान है कौन ईसाई? आजकल तो खतना का मसला भी नहीं रहा, पहले खतना के मसले से फर्क कर लिया जाता था, अब तो दोनों खतना कराते हैं। अब तक उसकी शक्ल, फर्क की शक्ल ये थी कि कम से कम उनको बेसतर करके देख लिया जाता था और फर्क कर लिया जाता था कि एक मुसलमान है खतना की वजह से और एक गैर मुस्लिम है खतना नहीं होने की वजह से। आज तो वो फर्क भी मिट गया, चेहरों पर इस्लामी दाढ़ियां नहीं है और सर पर इस्लामी बाल नहीं है, बदन पर इस्लामी लिबास नहीं है, बाकी कोई और चीज इस्लाम के नामो निशान अपने वजूद से मिटाते हैं और इस्लाम के फैलने की बातें होती, ऐसा तो इस्लाम फैल नहीं सकता। तो भाई और बुजुर्गों, बड़ी खास गुजारिश है आप हजरात से कि अपने लिए जो फर्ज दर्जा है इल्म के हासिल करने का, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसके लिए जो सूरत भी हो सकती हो वो सूरत इख्तियार करें, अपने बच्चों को कम से कम एक हर घर के अंदर अपने लिए एक सिफारिश तैयार करें। अपने किसी के दो बच्चे, किसी के चार बच्चे, किसी के पांच बच्चे, तो वो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सबको दीन का इल्म हासिल करें, फिर उसके बाद उनको दुनिया की तालीम भी पढ़ाएं, फुनून भी पढ़ाएं। लेकिन अगर सबको नहीं पढ़वा सकते तो किसी एक को तो अपने लिए आखिरत का जरिया बना दे। हम माल का चंदा देते हैं दीनी मदारिस के वास्ते, दीनी कामों के वास्ते, बच्चों का चंदा माल के चंदे से बढ़कर होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका जारिया जिन चीजों को फरमाया है उनमें से एक वो औलाद भी है जिसको वो नेको साले बनाकर दुनिया के अंदर छोड़ गया है और वो उसके लिए आखिरत का जरिया हो रही है। नेको साले बनेंगे तो फिर आखिरत का जरिया होंगे ना, और अगर उनको नेको साले बनाने की फिक्र ही नहीं होंगी तो फिर वो आखिरत का जरिया कैसे होंगे? अल्लाह पाक हम सबको सही इल्म की तौफीक नसीब फरमाए।